सफल कर लो सांसें अपनी।
शांति। तो आज हम संडे की जो मुरली है उसको रिवाइज करेंगे। 21 अप्रैल 2019 की, जो कि 26 अगस्त 1984 की है। लक्ष्य प्रमाण सफलता प्राप्त करने के लिए क्या था? लक्ष्य प्रमाण सफलता प्राप्त करने के लिए स्वार्थ की बजाय सेवा अर्थ कार्य करो। ये मुरली की हेडिंग है। लक्ष्य प्रमाण सफलता प्राप्त करने के लिए स्वार्थ के बजाय सेवा अर्थ कार्य करो। तो इस मुरली में हम 12 बातें देखेंगे। सबसे पहले है त्रिमूर्ति मिलन। त्रिमूर्ति मिलन, ज्ञान सूर्य बाप श्री बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और ज्ञान सितारे बच्चे, ये मधुबन के मंडल में मिलन हो रहा है। यहाँ बाबा ने बताया आकाश मंडल में भी सितारे होते हैं, लेकिन ये है मधुबन का आकाश मंडल, इसमें त्रिमूर्ति मिलन हो रहा है, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य और ज्ञान सितारे। तो इस मिलन में क्या हो रहा है? ज्ञान सूर्य बाप क्या देते हैं, ज्ञान चंद्रमा क्या देते हैं? ज्ञान सूर्य बाप सर्वशक्तियों का, विशेष शक्तियों का, सर्वशक्तियों का वरदान देते हैं, और ज्ञान चंद्रमा बाप स्नेह का विशेष वरदान देते हैं, और बच्चे इसको प्राप्त करते हैं। तो ये त्रिमूर्ति मिलन हो रहा है। और इस वरदान से क्या होता है? बाबा ने कहा तुम बच्चे सभी ज्ञान सितारे हो। ये वरदान प्राप्त करने के बाद क्या होता है? हाँ, वो लवली और लाइट हाउस ये तो बनते हैं, लवली और लाइट हाउस बनते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है? सफलता। ये वरदान अगर साथ में रखते हैं तो सफलता मिलती है, क्योंकि यहाँ संदेश देने के लिए विदेश में जगदीश भाई जी जा रहे हैं, मोहिनी बहन दादी जी होंगे, तो बाबा जैसे उनको बता रहे कि विदेश में जाकर क्या करना है। तो बाबा कह रहे तुम सफलता के सितारे हो, साथ में ज्ञान सितारे, सफलता तुमको मिल गई तो तुम सफलता के सितारे हो, और सफलता बताने के, सफलता का संदेश देने के लिए जा रहे हो, सेवा को जो करने जा रहे हो, कैसे सफलता मिलती है उसका संदेश देने जा रहे हो। और फिर बाबा ने सफलता का महामंत्र भी बताया हूं कि सफलता कैसे मिलेगी और अगर नहीं मिलती है उसका कारण क्या है। तो सफलता मिलने का साधन कौन सा बताया? एक शब्द की स्मृति। हाँ, बच्चे सफलता तो चाहते हैं, बाबा ने कहा हर वर्ग सफलता चाहता है, कोई भी वर्ग हो, सफलता किस लिए? सुख शांति के लिए चाहते हैं, लेकिन चलते चलते लक्ष्य और जो है लक्षण, लक्ष्य प्रमाण लक्षण नहीं होते हैं तो अंतर पड़ जाता है, और वो अंतर एक शब्द का है, वो है स्वार्थ। तो बाबा ने कहा इस स्वार्थ के बजाय सेवा अर्थ कार्य करो तो सफलता मिल जाएगी। अगर स्वार्थ होता है तो क्या होता है? चार पांच बातें बताई, कला क्लेश, हंगामे, लड़ाई झगड़े, स्वार्थ के कारण संसार में भी देखते हैं, परिवारों में, समाज में स्वार्थ के कारण क्या लगा पड़ा संसार में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में देख लो, धर्म के क्षेत्र में देख लो, कहीं भी देख लो, अध्यात्म के क्षेत्र में भी देख लो, जहां जहां स्वार्थ है वहां कला क्लेश है, लड़ाई झगड़ा है, हंगामा, अपनी स्थिति को खराब कर लेते हैं। और ये कब होता है? जब लक्ष्य प्रमाण हमारे लक्षण नहीं होते, हम लक्ष्य को भूल जाते हैं और स्वार्थ के कारण इन चीजों में लग जाते हैं, तो सफलता के गए फिर असफलता मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। तो ये जो दो वरदान मिले, ज्ञान सूर्य चंद्र, ज्ञान सूर्य शिव बाबा से और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा से, इनको हमको साथ में रखना है। जैसे वो सूर्य क्या करता है, सारे कीचड़े को भस्म कर देता है, अगर हम उसके सामने बैठे तो हमारे में क्या होता है, विटामिन आते हैं, एनर्जी आती है, शक्ति आती है। इसी तरह ज्ञान सूर्य बाप की अगर हमको स्मृति रहती है तो आत्मा में शक्ति भरती जाती है, सामर्थ्य आता जाता है, ज्ञान सूर्य से ज्ञान के विटामिन, ज्ञान की स्मृति आती जाती है, तो वो हमारे स्वरूप में आ जाती है। जैसे सूर्य की धूप जब हम लेते हैं तो नेचुरल फील होती है कि हमको धूप लग रही है, क्योंकि हमको स्मृति, हम उसके सामने बैठे हैं। उसी तरह ज्ञान सूर्य बाप के सामने बैठे रहेंगे अर्थात उसकी ज्ञान की स्मृति में रहेंगे तो नेचुरल उसके स्वरूप का अनुभव करते जाएंगे। तो जो वरदान है हमको एक कार्य में लगाने, बाबा ने कुछ दिन पहले कहा ना कि वरदान तो बच्चे ले लेते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन यूज नहीं करते हैं, अर्थात वो स्मृति में नहीं लाते हैं। तो वरदानों को कार्य में लगाना अर्थात पहले तो उनकी स्मृति चाहिए, बार बार मन बुद्धि में वही बातें अगर हमारी बुद्धि में रिपीट होती रहेंगी तो वो हमारे स्वरूप में आ जाएगा और कर्मों में वो स्वतः लगेगा। तो ये सूर्य की विशेषता है, और ज्ञान चंद्रमा की विशेषता स्नेह। कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए स्नेह भी बहुत जरूरी है। बड़े संगठनों में या कहीं भी, या ऑफिस में काम करते हैं, या परिवार में, या सेवा केंद्र में, अगर जहां स्नेह नहीं है तो क्या होता है? सूखा सूखा जीवन रहता है, सब एक दो से दूरियां बना लेते हैं। इतने बड़े संगठन को चलाना, बाबा स्नेह का सागर है, देखते हैं दादी जी भी कितने स्नेह से संगठन को चलाते थे। पहले कोई भी अगर डिसीजन लेना होता था तो दादी पूरे मधुबन वासियों को इकट्ठा करके सबसे पूछती थी, हालांकि फाइनल तो वही होता था जो दादी करेगी, क्योंकि सबको पता ही है, क्योंकि सबको स्नेह इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि उस स्नेह में सब पिघल जाते थे, और बिना किसी टीका टिप्पणी के उस कार्य में सब जी जान से जुट जाते थे। तो स्नेह कितनी बड़ी शक्ति है। तो केवल एक है, उसको हम शब्दों से ले रहे हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकल मिलाना, और स्नेह तब बढ़ता है जब सामने वाला अगर कुछ कहता है उसको हम जीवन में लाते हैं, तो हमारा उसके प्रति स्नेह बढ़ेगा और उसका भी हमारे प्रति स्नेह बढ़ेगा। अगर केवल शब्दों तक ही वो रचना रख दी और हमने अपने जीवन में नहीं लाया, अर्थात कार्य में नहीं लाया उस वरदान को, तो फिर उसका परिणाम जो सकारात्मक नहीं मिलता है। तो जो भी वरदान मिलते हैं, जो बाबा ने कहा ज्ञान सूर्य से और ज्ञान चंद्रमा से जो वरदान मिलते हैं, तो उन वरदानों को हमें जीवन में लाना है तो सफलता मिलेगी। अगर वो वरदान समृद्धि में नहीं, तो चलते चलते फिर सेवार्थ के बजाय स्वार्थ की बातें आने लगेंगी। स्वार्थ में क्या क्या होता है, फिर एक दो की कमी कमजोरियां निकालेंगे, अपनी कमी कमजोरियों से कुछ पाने के लिए दूसरों पर टीका टिप्पणी करेंगे, दूसरों की बातें तुरंत बताएंगे, क्योंकि अपने को सिद्ध करना है, सत्य को सिद्ध करना है। इसलिए बाबा कहते हैं सत्यता के होश को खो देते हैं, उसी मुरली के वरदान में है ना। अगर व्यर्थ में चले जाते हैं तो सत्यता के होश को खो देते हैं, यथार्थ व्यर्थ का जोश आता है, सत्यता और यथार्थता के होश को खो देते हैं। तो ये वरदान अगर स्मृति में रखेंगे तो वो फलदायक होंगे, फलीभूत होंगे। तो इस सफलता का मंत्र था स्वार्थ के बजाय सेवा अर्थ कार्य करो। तो हमको निरंतर स्मृति रहनी चाहिए कि हम सेवा अर्थ हैं। सेवा शब्द में कितना समाया हुआ है, सेवा माना क्या होता है, सेवा करने से जैसे अंदर में उमंग उत्साह आता है ना, और सेवा का फल जो है बहुत मीठा होता है, क्योंकि सेवा अर्थात निस्वार्थ रूप से, वहां हमें कोई अपेक्षा नहीं है किसी से, और सेवा से दुआएं मिलती है, हमारा जीवन निर्विघ्न बनता है, और सेवा करने से अनेक लोगों की मानसिक वृत्ति बदलती है, उनके अंदर भी सेवा करने के उमंग उत्साह के संकल्प जागृत होते हैं। तो बाबा कहते हैं सेवा अर्थ कार्य करो। तो ये दूसरी बात होगी, पहली बात थी त्रिमूर्ति मिलन, और दूसरी बात सफलता का महामंत्र स्वार्थ की बजाय सेवा अर्थ कार्य करो। तीसरी बात है सेरामनी, बाबा ने अलौकिक सेरामनी बनाई, और अलौकिक सेरामनी में बहुत कुछ किया। तो अलौकिक सेरामनी में क्या था, क्या क्या किया, पहले तो बाबा ने स्मृति दिलाई कि भविष्य में तुमको 21 जन्म के लिए राज तिलक तो मिलेगा। तो यहां बाबा ने ताज भी पहनाया, तिलक भी है, तख्त भी दिया, मालाएं भी पहनाई, पुष्प भी अर्पण किए, तो और एग्जाम्पल भी दिया भक्तों का, वो लोग क्या करते हैं और तुम बच्चे क्या करते हो। तो बाबा ने कहा 21 जन्म राज्य तिलक तो मिलेगा तुमको, लेकिन अभी ब्राह्मण जीवन में क्या मिला है, कौन सा तिलक मिला है, स्मृति का तिलक मिला है। उस दिन बताया था ना 21 तिलक स्मृति के। तो हम निरंतर अपने स्मृति स्वरूप में रहें, कौन कौन सी स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों को मन में रखना, अर्थात हमारा तिलक लगा हुआ है। अगर विस्मृति हैं अर्थात तिलक मिटा हुआ है, और तिलक किसका मिटता है, जिसका चला कौन चला जाता है, सुहाग चला जाता है। तो हम सदा सुहागिन हैं, सदा तिलक लग रहे, स्मृति का तिलक सदा लगा रहे कि हम कौन कौन, अर्थात जितने भी बाबा ने सम्मान दिए हैं उनको अगर स्मृति में रखेंगे, अर्थात तिलक लगा हुआ है, और तिलक लगा हुआ है तो सबको पता चलेगा कि ये इसके साथ में है, अगर तिलक नहीं है तो अकेला अकेला रहेगा। तो अकेला रहेंगे तो फिर संसार में जाने के ख्याल भी आएंगे, है ना, अगर पता के साथ ही है अभी साथ में तो जाने का ख्याल नहीं आएगा। इसलिए बाबा ने उस दिन कहा ना कि बच्चे चलते चलते डाइवोर्स दे देते हैं, डाइवोर्स क्यों देते हैं, क्योंकि साथी साथ नहीं है, उसकी स्मृति नहीं है कि हमारे साथ में कौन है। तो अनेक प्रकार की स्मृतियों का तिलक हमें हमेशा लगा रहना चाहिए, कोई ना कोई स्मृति हमेशा अगर बनी रहेगी तो भी हम माया से सेफ रहेंगे। और दूसरा तिलक बताया, एक तो है ब्राह्मणों को स्मृति का तिलक, और देवताओं को है राज्य का तिलक, और तीसरा तिलक कौन सा बताया, फरिश्ताओं का, फरिश्ता को कौन सा तिलक है, हाँ सदा संपन्न संपूर्ण शक्तिशाली स्थिति का तिलक, क्योंकि बाबा ने कहा बिना फरिश्ता बने देवता बन नहीं सकते। तो यहां बाबा ने तिलक बताए, तीन तिलक, एक तो ब्राह्मणों को स्मृति का तिलक, देवताओं को राज्य तिलक, और तीसरा है फरिश्तों को संपन्न और संपूर्ण बनने का जो तिलक है ये लगा हुआ है। और तिलक के साथ बाबा ने फिर मालाएं भी देखी, कौन कौन सी मालाएं थी, बाप समान और मम्मा समान और सफलता की माला, हाँ बाबा ने गले में सफलता की माला देखी, क्योंकि पीछे सफलता का मंत्र बता दिया स्वार्थ की जाए सेवार्थ कार्य में करो, कार्य में लगाओ, तो यहां सफलता की माला देखी। तो बाबा ने कहा बच्चे सवेरे सवेरे स्नेह के संकल्पों के रत्नों की मालाएं बाप को पहनाते हैं, और बाप भी रिटर्न में बच्चों को क्या देते हैं, स्नेह देते हैं, शक्तियों का वरदान देते हैं। जैसे भक्त लोग कॉपी करते हैं तो भक्त लोग भी क्या करते हैं, वो अपने मूर्ति को कितना प्यार से सजाते हैं, मालाएं पहनाते हैं, उनको पुष्प अर्पण करते हैं, तो उनकी मूर्ति के प्रति या अपने इष्ट देव के प्रति कितना दृष्टिकोण ऊंचा रहता है, और कितनी अपेक्षा रहती है कि उस इष्ट देव से हमको ये प्राप्ति हो। तो बाबा ने यहाँ बच्चों का कि जो बच्चे अमृत वेले सच्ची लगन से बाबा की याद में मग्न रहते हैं और बाप को स्नेह के पुष्पों की माला अर्पण करते हैं, उमंग उत्साह के से अर्पण करते हैं, तो बाप भी उनको रिटर्न में वरदान और शक्तियां देते हैं। तो ये थी कि बाबा श्रृंगार कर रहे हैं, अलौकिक सेरेमनी है। तो इसमें ताज, तख्त और तिलक और मालाएं, और भक्तों ने जैसे कॉपी किया तो बाबा ने बताया कि तुम बच्चे कैसे बाबा को याद करते हो, तो बाबा तुमको रिटर्न में क्या देते हैं, जैसे इष्ट देव अपने भक्तों को अनुभव कराते हैं, और यहाँ बाबा तुम बच्चों को रिटर्न में शक्तियां और वरदान देते हैं। तो ये अलौकिक सेरेमनी थी, ये थी तीसरी बात। फिर चौथी बात सफलता की चाबी। हाँ हाँ, बाबा ने सफलता की चाबी भी दी कि सफलता की चाबी आपके हाथ में है, संसार में सफलता की चाबी को देता नहीं है, लेकिन तुम सफलता की चाबी देने जा रहे हो, ताकि उस सफलता की चाबी खजाने की चाबी है वो, तो वो सबको दे के आएंगे जिसके लिए सब लोग ढूंढते हैं सफलता कैसे मिले, तो तुम बच्चे सफलता की चाबी दे रहे हो। तो ये वाली बात भी थी। और चौथी बात है मधुबन वालों को बाबा ने याद किया। मधुबन वाले अर्थात क्या बताया था, शक्तिशाली अर्थात सदा शक्तिशाली, और मधुबन वाले अर्थात अथक सेवा में लगे रहने वाले। तो बाबा ने कहा यहां तुम बच्चों ने रेस्ट भी ली, अध्ययन भी किया, सोनति भी की, और अभी सीजन शुरू होने वाला है तो उसके लिए तैयार रहो। तो मधुबन वाले अर्थात सदा शक्तिशाली, सदा सेवा में रहने वाले, और मधुबन वाले अर्थात सोन्नति भी करने वाले। तो यहां मधुबन वालों को बाबा ने याद किया। मधुबन वाले एग्जाम्पल है, सब याद करते हैं, इसमें ये भी बताया। और फिर नेक्स्ट था बाबा ने किसको याद किया, जो आदर्श हैं हमारे जगदीश भाई, एक सच्चा आदर्श ब्रह्मा कुमार कैसा होता है वो उनकी लाइफ हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि जगदीश भाई का जीवन जो है बहुत सीमित जीवन, बहुत बैलेंस वाला जीवन देखा हमने उनको, नज़दीक से भी कभी देखा। तो इतनी महानताएं होने के बावजूद जैसे निर्माणता के भंडार थे वो, एकदम निर्माण, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे बहन हो, छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, सबको सम्मान देते थे निर्माणता के, जैसे वो एकदम प्रत्यक्ष रूप में उनके निर्माणता झलकती थी। तो जगदीश भाई को बाबा ने याद किया कि पार्ट कैसा है, शक्तियों के साथ सेवा के क्षेत्र में विशेष पार्ट बजाना, ये आपका विशेष पार्ट है, निमित्त हो उसके, क्योंकि जन्म ही सेवा से हुआ है, रमणीक बहुत थे, और पालना भी सेवा, पालना भी हो रही तो सेवा से हो रही है। माना जगदीश भाई इतने रमणीक थे, जितना ज्ञान की गहराई है उतना रमणीक भी बहुत थे, किसी को ज्ञान जैसे सूखा सूखा ना लगे, भारी ना लगे। हम देखते थे जगदीश भाई की क्लास होती थी तो सब जगदीश भाई से पहले पहुंच जाते भाग भाग करके, जरा भी छूट नहीं देनी चाहिए, यहां तक कि बड़े दादियां भी जगदीश भाई से पहले क्लास में पहुंच जाते थे, और उनकी क्लास जो ना दिल को लगती थी, जैसे दिल को भेद देती थी अंदर जाके, और वो एकदम ठोस भी बोल देते थे, जैसे अंदर में किसी को चुभने वाला हो। अगर कोई भी हमारी कमी कमजोरी होती थी तो हमको जैसे रियलाइज होता था कि सचमुच ये हमको, इस कमी से हमको उभरना चाहिए, ये कमी हमको छोड़ देनी चाहिए। तो उन्होंने रग रग में जैसे बाप दादा को बसा के रखा हुआ था प्रत्यक्ष रूप से, तो हड्डी हड्डी जिगरी उन्होंने सेवा की है। तो यहाँ जगदीश भाई को बाबा जैसे विदेश जा रहे हैं तो छुट्टी ले रहे हैं जगदीश भाई, तो बाबा कह रहे आप सेवा के भंडार पर जा रहे हो, है ना, तो सेवा के भंडार पर जा रहे हो तो जन्म भी सेवा से हुआ है, पालना भी सेवा से हो रही है, शक्तियों के साथ पार्ट बजाना ये भी आपका विशेष पार्ट है, तो इस विशेष पार्ट से आगे भी चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। जैसे जगदीश भाई जी को बाबा ने वरदान दिया, जितना भी लिटरेचर यज्ञ इतिहास यज्ञ का वो सब उनके हस्तों द्वारा लिखा गया हुआ, तो कितना सारा लिटरेचर देखो, सब वेद शास्त्रों का सार उसमें समा दिया हुआ है, वो सब कोटेशन दी है, इतनी इतनी बड़ी बड़ी किताबें देखने से डर लगता है। तो इतनी बड़ी बड़ी किताबें, हालांकि इतना पढ़ने हमने कई किताबों तो अभी भी हाथ नहीं लगाया होगा लेकिन जितना ज्ञान समझ में आ गया तो बहुत बड़ी, उसको अगर हम आचरण में लाएं तो वो भी बहुत है, लेकिन इतना हर बात का उन्होंने स्पष्टीकरण किताबों में दिया है, अगर हम उसको पढ़ें तो बाहर का दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं बाहर के वेद शास्त्र क्या है, भूसा है, लेकिन उनको हर चीज की समझ है कि सचमुच भूसा है, इसलिए उन्होंने हम ब्राह्मणों को सचेत करने के लिए इतना बड़ा लिटरेचर लिखा हुआ है, और उसका स्पष्टीकरण कैसे करना है वो सारा उसमें है। तो कितना जैसे एक आदर्श जीवन था उनका, सेवा के प्रति समर्पण भाव, पढ़ाई के प्रति, दूसरों को सम्मान देने के लिए, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, यज्ञ के प्रति, और उनका त्यागी जीवन कितना, हमने अंत तक देखा उनके पास पुरानी गाड़ी थी, उनको कई बार बोला गया नई गाड़ी के लिए, लेकिन बिल्कुल नहीं ली उन्हें। और एक बात और देखिए, जब भी वो यहां से नीचे जाते थे तो ट्रांसपोर्ट में रुक कर जाते थे, कोई गाड़ी में चलने वाला है साथ में, तो इतना वो दूसरों के प्रति माना त्याग, दूसरों को भी उन्होंने अपने कर्मों से सिखाया। तपस्या भी उनके जीवन की जैसे नेचुरल दिखाई देती कि सचमुच तपस्वी जीवन, जैसे कहते थे चलते हैं तो धीरे धीरे क्यों, जैसे खुद वो कहते थे ऐसे लगते जैसे जिंदा लाशें चल रही हो, किसी को जान ही नहीं है। अरे वो मंगोत्साह से चलो, ब्राह्मण जीवन है, स्वयं भगवान हमारे साथ में है, तो कहते हमको धीरे धीरे चलना पसंद नहीं लगता, जगदीश ऐसे कहते थे। तो ये चीजें थी कि उनके त्याग तपस्या सेवा का जो जीवन था प्रतिमूर्ति थे। तो ये बाबा यहां जगदीश भाई को संबोधित किया कि सेवा के भंडार पर जा रहे हो विदेश में, तो कैसे कैसे सेवा करनी है। तो ये था जगदीश भाई से। फिर है और किससे था, मोहिनीबेन से। तो मोहिनीबेन को बाबा ने कहा कि साकार में भी साथ रही, मोहिनीबेन ब्रह्मा को भी काफी समय में साथ रहे उनके, तो जैसे साकार में रहे आपने अनुभव किया मोहब्बत का, बाप की मोहब्बत का, तो आप विदेश जा रही हो बाहर वालों को भी मोहब्बत का अनुभव कराना, क्योंकि वो बच्चे मेहनत करते करते थक गए हो, तो आप वरदानी आत्मा हो, तो आप अपने वरदानों से उनकी मेहनत को, जो मेहनत से थक गई हैं उनको समाप्त करके मोहब्बत कैसे, मोहब्बत में कैसे रहते हैं, वो वरदान दे के आना सारा। तो बाबा ने कितना ऊंचा ऊंचा दृष्टिकोण बाबा हमारे हम बच्चों के प्रति है कि वरदान दे के आना, क्योंकि बाबा के महावाक्य हर एक महावाक्य जैसे वरदान है, वो स्मृति में रहते हैं, अगर वो हमारे स्वरूप में है तो नेचर वो वरदान रूप में कार्य करते हैं। तो यहां मोहिनीबेन को बाबा ने याद किया कि विदेश में जा रहे हो तो मेहनत से मुक्त करके आना, क्योंकि मेहनत करने करते करते थक गए हैं। फिर नेक्स्ट है पार्टियों से, तो जो भी पार्टियां बैठी हैं उसमें फिर विशेषता बताई, उस दिन भी मुरली का विशेषता वाला प्रश्न पड़ा था ना परसों ही, तो बाबा ने कहा आप सब विशेष पार्टदारी हो, विशेषताएं विशेषताओं से भरे हुए, तो अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाओ, और कौन कौन सी विशेषताएं अपने में देखकर दूसरों को उनको जैसे दान दो, दूसरों को दो, क्योंकि उसमें बाबा ने कहा कि सारे विशेषता का क्या होता है, जो विशेष पार्टदारी होता है तो उसके ऊपर सबकी नजर रहती है, तो वो संकल्प बोल कर्म श्वास में भी उसका पार्ट वैसे चलता है, तो अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाने के लिए हमेशा स्मृति में रखो कि मैं विशेष पार्टदारी आत्मा विशेष कर्म करने के लिए अवतरित हुई हूं। तो ये पार्टियों से मुलाकात थी। फिर नेक्स्ट है, अगला कौन सा है, मुंबई, बॉम्बे वालों से, बॉम्बे वालों से बाबा बात करें, तो बॉम्बे वालों को भी विशेष कहा कि बॉम्बे वालों को आप संदेश जल्दी दे देना, क्यों, बोला बहुत बिजी रहते हैं, है ना, तो वो अपनी विशेषता को भूले हुए हैं, तो उनको भी अपनी विशेषता की पहचान देके उनमें भी विशेषता भरना, ताकि वो अपनी विशेषताओं को कार्य में लगा सके। तो बॉम्बे वालों को भी संदेश जरूर देना, क्योंकि वो बिजी बहुत रहते हैं। फिर नेक्स्ट है, हाँ, क्वेश्चन आंसर है, एकाग्रता के ऊपर है। तो बाबा ने यहां एकाग्रता से फायदे बताए, वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं लेकिन इसमें चार पांच बताए। जो एकाग्रता की शक्ति से क्या होता है, मालिकपन का अनुभव स्वतः होता है, उसमें फिर युद्ध नहीं करनी पड़ती है, एक बाप दूसरा ना कोई, सदा ये स्मृति रहती है, एक रस्त फरिश्ता स्थिति बनी रहती है, और स्वतः सर्व के प्रति कल्याण का संकल्प रहेगा सर्व के प्रति, तो ये एकाग्रता के प्रति थे। और फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा का भी जिक्र किया कि ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। तो ब्रह्मा बाबा का जीवन कैसा था, बाबा ने कहा ना कि उनका जीवन चलते फिरते कैसे दिखाई देता था, जैसे वो फरिश्ता स्थिति में स्थित हैं, उपराम हमेशा रहते थे, विस्तार को भी सार में समाते थे, बच्चे अनेक प्रकार के प्रश्न उत्तर लेकर आते थे लेकिन उनके सामने आने से सब भूल जाता था, या अगर सुनते भी थे तो सुनते हुए भी जैसे नहीं सुनते, अर्थात जो काम की बात है वो सुनकर उनको उसी अनुसार प्रश्न का उत्तर दे देते थे। तो ब्रह्मा वासमान अव्यक्त फरिश्ता बनो। और इसमें और भी बताया, फिर नेक्स्ट, बशीभूत अवस्था क्यों होती है, क्यों होती बशीभूत अवस्था, बशीभूत अवस्था अर्थात जब हमारी स्मृति चेंज होती है कि ठीक है देख लेंगे सोच लेंगे कर लेंगे, होना तो ही है, होना तो है ही, ये सब बशीभूत अवस्था है। तो और ये बशीभूत अवस्था हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देती है, तो करना ही है। और उस मुरली में स्लोगन भी था कि ब्रह्मा बाप समान बनना, फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप को के कदम पर कदम रखो। तो हमारे सामने एग्जाम्पल मूर्त है, और इसमें एक व्यर्थ की बात की कि व्यर्थ से अविद्या हो जाए, नहीं तो व्यर्थ का जोश क्या करता है, सत्यता और यथार्थता के होश को समाप्त कर देता था। तो ये सारे मूल्य के 12-13 पॉइंट थे। तो सबसे पहले हमने जो देखा त्रिमूर्ति मिलन, ज्ञान सूर्य बाप और ज्ञान चंद्रमा। ज्ञान सूर्य बाप से क्या मिलता है, शक्तियों का वरदान, और ज्ञान चंद्रमा बाप से क्या मिलता है, स्नेह का वरदान। अगर इन दोनों वरदानों को हम अपने कार्य में लगाते हैं तो सफलता सुनिश्चित है। और सफलता में चलते चलते अगर अंतर आता है तो क्यों आता है, हाँ, अर्थात लक्ष्य, लक्ष्य एक तो भूल जाता है, हाँ, आकाश मंडल भी बताया बस में। हाँ, यहाँ त्रिमूर्ति मिलन है, जो आकाश मंडल में केवल चंद्रमा और सितारे मिलते हैं और वो सभी नहीं मिल पाते, कोई तो टूट के गिर भी पड़ते हैं। सूर्य चंद्रमा का मिलन हुआ तो ग्रहण हो जाता है, लेकिन यहाँ ग्रहण माया पर ग्रहण लग जाता है यार। तो यहाँ ज्ञान सूर्य बाप, ज्ञान चंद्रमा और सितारे बच्चे हैं, इनका त्रिमूर्ति मिलन हो रहा है, तो वो है आकाश मंडल, ये है मधुबन का मंडल, मधुबन के मंडल में इनकी रिमझिम लगी हुई है, त्रिमूर्ति मिलन हो रहा है। तो ज्ञान सूर्य बाप से शक्तियों का वरदान, तो ये सारी वैसे योग में बैठे बैठे अगर कई बार याद करो तो बहुत सुंदर योग के विजन है इसमें। जैसे ज्ञान सूर्य चंद्रमा के बीच में ज्ञान सितारा हूं, दोनों कंबाइंड है, और पूरे बॉडी में जैसे ज्ञान सूर्य के अंदर में बैठा हुआ हूं, और सारे जर्म्स जन्म जन्म के जो है अनेक विकर्मों के जन्म भस्म हो रहे हैं। और फिर शीतलता, जो ज्ञान चंद्रमा है, ज्ञान चंद्रमा आया तो ज्ञान चंद्रमा से मेरी सारी कर्मेंद्रियां शीतल होगी, आत्मा की जैसे प्यास बुझ रही है अंदर से। तो योग में भी हम उसको यूज कर सकते हैं, योग के विजन अलग नए नए तरीके से योग अगर करेंगे तो उनको रमणीकता भी रहेगी और बहुत अच्छा भी लगेगा। और फीलिंग योग, क्योंकि इन इस हर जो बाबा की हर बात को हमको फीलिंग करना, उसका महसूस करना, अनुभव करना है। तो केवल स्मृति में रखेंगे, एक तो है मूल्य को केवल स्मृति में रखना, लेकिन वो हमारे आचरण में तब आएगी जब हमको उसको योग से प्रयोग में लाएंगे, उसका प्रयोग करेंगे तो हमको याद भी रहेगा। इसलिए जब भी हम योग करते हैं तो संडे की जो मुरली होती है कोई भी है उसको उसमें सोचना है, क्योंकि बिना ज्ञान के योग में बैठ जाओ तो फिर नहीं मन का गुरुगा। इसलिए ज्ञान योग में बैठते ज्ञान का स्मरण करना अति अनिवार्य है। हाँ, ज्ञान का स्मरण करते करते कोई एक विजन पर हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, और मन एकाग्र हो जाएगा तो फिर बीज रूप अवस्था में लंबे समय तक हम एक संकल्प में टिक सकते हैं। लेकिन बिना ज्ञान के योग करेंगे तो वो सूखा सूखा रहेगा, जीवन में बदलाव नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं आएगा और रमणीकता नहीं आएगी। इसलिए जो भी मुरली होती है उसको हमको योग में यूज करना है उसको। तो यहाँ जैसे ज्ञान सूर्य बाप है हमारे साथ कंबाइंड है, मैं ज्ञान सितारा चमक रहा हूं, उसकी सारी शक्तियां मुझे सितारे में प्रवेश कर रही हैं और सारी विकर्म भस्म हो रहे हैं, पाप खत्म हो रहे हैं। ज्ञान चंद्रमा बाप है, वो भी मेरे से कंबाइंड है, तो उसकी सारी शीतलता मुझ आत्मा में समाती जा रही है, अनेक जन्मों की जो आत्मा की प्यास वो समाप्त होती जा रही है, आत्मा जैसे एकदम संतुष्ट हो रही है, और संतुष्टता का परिणाम हमारे जीवन में प्रसन्नता खुशी दिखाई देगी, तृप्त हो रही है। और बाबा ने कहा संतुष्टता अर्थात जो आत्मा वही संतुष्ट रह सकती है जो सर्व प्राप्तियों से परिपूर्ण होगी, जिसके पास सर्व प्राप्तियां हैं। तो ये प्राप्तियां तभी होगी जब हम ज्ञान सूर्य बाप और ज्ञान चंद्रमा से सदा हमेशा कंबाइंड बनकर रहेंगे। तो ये चीज देखनी है कि इस चीज को हमको योग मिलाना है। तो ये पहली बात थी त्रिमूर्ति मिलन। दूसरी बात थी त्रिमूर्ति मिलन, मिलन मनाने के बाद बाबा ने कहा सफलता होती है, क्योंकि हमको वरदान मिल गए सफलता के, स्नेह का वरदान और शक्ति का वरदान। तो सफलता के लिए बाबा ने बताया अगर अंतर क्यों पड़ता है, चलते चलते लक्ष्य प्रमाण लक्षण हमारे नहीं रहते, उसका अंतर एक ही शब्द है, वो है स्वार्थ। सेवार्थ के बजाय स्वार्थ शब्द बुद्धि में आता है, और स्वार्थ जहां होता है वहां कला क्लेश हंगामे होते हैं। तो बाबा ने कहा सफलता का संदेश देने के लिए आप सबको जा रहे हो, सफलता का महामंत्र है, तो इसको सदा साथ में रखना है। स्वार्थ शब्द की बजाय सेवा अर्थ, ये सदा स्मृति में रहो, और जहां सेवा भाव होता है वहां अनेक प्रकार की विशेषताएं हमारे में स्वयं आती जाती हैं, अनेक आत्माओं से दुआएं मिलती हैं, हमारा जीवन निर्गुण बनता जाता है, बिजी रहते हैं सेवा में। तो ये था दूसरा सफलता का महामंत्र, सदा साथ में रखना। और तीसरा था, हाँ, यहाँ सफलता की चाबी भी है, सफलता की चाबी सबको दे जाना, क्योंकि सब क्या चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। तो तुम बच्चों को सफलता के खजाने की चाबी मिली है, गेट का चाबी सब देते हैं लेकिन सफलता के जानने की नहीं देते। तो ये था ये। और तीसरी बात थी, तीसरा किससे मिले बाबा? मधुबन वालों से। हाँ तो मधुबन वालों को नहीं, तीसरा अलौकिक सेरामनी, पहले सेरामनी की तो फिर मधुबन वालों से मिली। तो अलौकिक सेरामनी में बहुत सारी बातें हैं। बाबा ने तिलक भी दिया, ताज भी दिया, तख्त भी दिया। तिलक किसको दिया? पहले तो बाबा ने 21 जन्म राज्य तिलक को याद किया, लेकिन फिर बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण बच्चों को स्मृति का तिलक तो मिला हुआ है। कौन कौन सी स्मृतियां? जितने भी टाइटल हैं, सोमान है, मुरली का हर पॉइंट ही स्मृति हमें तिलक है, अर्थात हमेशा उसकी स्मृति बनी रहनी चाहिए। तो अनुभव होगा कि तिलक हमें सदा लगा हुआ है, सदा सुहागन है। और दूसरी बात है, दूसरा तिलक किसको दिया? देवताओं को तो 21 जन्म का राज्य तिलक बाबा ने कहा मिलता है। फरिश्ता अर्थात सदा संपन्न संपूर्ण शक्तिशाली, वो देव फरिश्तों को तिलक है। और ताज कौन सा दिया? और तख्त कौन सा दिया? लाइट का ताज। वैसे इसमें नहीं है, इसमें तो बस जिक्र ही केवल, लेकिन जिम्मेवारी का ताज, लाइट का ताज और तख्त कौन कौन से हैं बाबा के? एक तो है बाबा ने हमको वृक्ति रूपी तख्त ये स्मृति दिलाई है, और दूसरा है दिल तख्त, और तीसरा है गद्दी वाला तख्त, वो भविष्य राज्य तख्त। तो ये भी हमें हमेशा याद रहना चाहिए। और फिर बाबा ने मालाएं पहनाई कि सफलता की गाला माला तो तुम्हारे गले में पड़ी हुई है। तो बच्चे यहाँ भक्तों को बाबा ने याद किया, जैसे भक्त इष्ट देव से क्या चाहते हैं, इष्ट देव से भी सफलता चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं। तो जैसे इष्ट देव को भक्त कैसे याद करते हैं, उन्हें मालाएं पुष्पों की माला अर्पित करते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अमृत वेले सच्ची लगन वाले जो बच्चे होते हैं वो भी बाप दादा को सवेरे स्नेह के शुद्ध संकल्पों के रत्नों की मालाएं बाप को अर्पित करते हैं, और बाप रिटर्न में स्नेह का और शक्तियों का वरदान देते हैं। तो ये अमृत वेले पर विशेष बाबा ने फोकस किया कि सच्ची लगन से हम कितना शुद्ध संकल्पों का बाबा को भोग लगा रहे हैं, मूर्ति को कितनी स्वच्छता से, कितना प्यार से भक्ति मार्ग में भोग लगाते हैं। तो यहाँ हम बाबा को कितने शुद्ध संकल्पों से फूलों की मालाएं अर्पित कर रही हैं, अर्थात संकल्प रूपी फूलों की मालाएं कितने अर्पित कर रहे हैं। तो यहाँ ये था कि अलौकिक सारा मनी। फिर था मधुबन वालों को, मधुबन वाले अर्थात सदा शक्तिशाली। तो बाबा ने कहा रेस्ट की, शारीरिक रेस्ट भी ली और सो का उन्नति के लिए अध्ययन भी किया। अभी आप सीजन शुरू है तो बीमार नहीं होना, यहाँ उनके भी बोला था कि बीमार नहीं होना, रेस्ट तो ले लिए। बीमार माना मन से बीमार, शरीर तो कोई भी हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन से बीमार नहीं होता, क्योंकि अधिकतर बीमारियां हमें मन से पैदा होती हैं, है ना। कई बार अगर हमको सेवा का उमंग सा है तो शरीर की बीमारी वहां ध्यान ही नहीं देते उधर, है ना। तो मन से बीमार नहीं होना। तो ये था मधुबन वालों को। फिर जगदीश भाई को, जगदीश भाई को कहा बाबा ने कि आपका विशेष पार्ट जो है सेवा का, सेवा के लिए शक्तियों के साथ विशेष पार्ट है, आपका जन्म ही सेवा से हुआ है और पालना भी सेवा से हुई, पहला पांडव हैं वो, और आप सेवा के भंडार पर जा रहे हो, इसलिए सबको सफलता का वरदान दे के आना, सबको सेवा कैसे होती है वो अनुभव करा के आना, और विशेष पाठ शक्तियों के साथ रहेगा अंत तक तो रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे। ये था जगदीश भाई जी से। फिर था मोहिनी बहन से कि आप तो साकार पाठ भी बजाय साकार के साथ में भी रही, तो आप भी वरदान दे के आना। कौन सा वरदान? का सबको विदेश में कि वो मेहनत करते करते थक गए हैं, बाप से कैसे मोहब्बत होती है उसका वरदान दे के आता, वरदान देकर आना, क्योंकि आप वरदानी आत्माएं हो। तो ये मोहिनी बहन से मुलाकात थी। फिर नेक्स्ट है पार्टियों से मुलाकात। तो यहाँ बाबा ने विशेषताओं का जिक्र किया कि आप सब विशेष पाठधारी हो। तो विशेष पाठधारी आत्माओं की विशेषता क्या है कि सब में विशेषताएं देखना, सबको विशेष आत्मा बनाना। तो अपना विशेष पाठधारी सदा स्मृति में रखना और विशेषताओं को कार्य में लगाते रहना, ये पार्टियों से मुलाकात थी। फिर नेक्स्ट था बॉम्बे। बॉम्बे वाले सदा बिजी रहते हैं, इसलिए उनको संदेश देना। कौन सा संदेश? उनको विशेषताओं का संदेश देना, उनके अंदर जो विशेषता हैं। और यहाँ और भी बात कही, जो विशेषता वाली विशेष आत्मा है तो वो कहाँ भी रहें, चाहे किस कैसे भी माहौल में रहे, लेकिन वो विशेषता से सबको आकर्षण करती है। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हीरे का एग्जाम्पल, जैसे हीरा मिट्टी के अंदर होता है, अगर गंध के अंदर भी होता है लेकिन अपनी चमक थोड़ा नहीं छोड़ेगा वो। तो बाबा ने कहा जो विशेष पाठधारी विशेष आत्मा है, जो वो कहीं भी जाएंगी, कैसा भी वायुमंडल हो, विकारों का वायुमंडल हो, लेकिन वो विशेष आत्मा अपना विशेषता के कारण सबको विशेष रूप से आकर्षण करेगी। तो हमारे अंदर जो भी ईश्वरीय विशेषताएं भरी हैं, वो विशेषताएं दूसरों को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाएगी, अगर हम विशेषता कार्य में लगाने की अपने अंदर स्मृति रहेगी। तो ये था पार्टियों से मुलाकात बॉम्बे से। स्टेज पर लाओ उनको, हाँ विशेषताओं को अपनी स्टेज पर लाओ। और एक और बात थी स्वार्थ का जो पीछे, तो बाबा ने कहा मूल कारण भले अनेक प्रकार के विकार हों लेकिन अंदर में स्वार्थ की भावना रहती है, ये भी उसमें था एक। तो हाँ सुख शांति चाहते हैं वो, लेकिन स्वार्थ आ जाता है अर्थात लक्ष्य जो है लक्षण के, उसमें लक्ष्य के अनुरूप लक्षण नहीं आते तो स्वार्थ आ जाता है उसमें, तो सुख शांति की बजाय फिर वो दुख शांति मिलता है, अशांति तो दुख अशांति। तो ये था। फिर नेक्स्ट था एकाग्रता के बारे में प्रश्न था कि एकाग्रता से अगर एकाग्र है तो मालिकपन का वो अनुभव करते हैं, युद्ध नहीं करनी पड़ती है, एक बाप दूसरा को ये अनुभव होता है, एक रस परिष्ठ स्थिति रहती है और सबके प्रति कल्याण स्मृति में रहता है, स्नेह और कल्याण की स्मृति रहती है कि सबका कल्याण करना है। कब? जब एकाग्रता हमारी, और इसके ऊपर बाबा ने आगे भी कहा कि अगर फरिश्ता बनना है तो एक बात पर ध्यान रहे, वो है मन की एकाग्रता, इस पर विशेष ध्यान रहे। तो मन एकाग्र करने के ये सारे तरीके ही हैं, मुरली को बार बार याद करना है, उसी के बारे में सोचना, क्योंकि जब तक हमारे बोल और बाबा के महावाक्य में समानता नहीं आएगी तब तक हमारी एकाग्रता नहीं बढ़ेगी। तो जितना हम उसको पढ़ते जाएंगे जीवन में लाते जाएंगे तो मन की एकाग्रता स्वतः बढ़ती जाएगी, जितना समय चाहे उतना समय हम अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये था एकाग्रता। और फिर बताया बाबा ने वशीभूत अवस्था की बात, कि वशीभूत आत्माएं वो होती हैं जो सोचते हैं कर लेंगे, सोचा तो ऐसा था करना नहीं है हो गया है, तो ये वशीभूत अवस्था है। तो इस वशीभूत अवस्था के भी वश में नहीं होना, व्यर्थ बातों के वशीभूत हो जाते हैं, और व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या हो जाए, ये प्रधान में था उसमें, व्यर्थ से अविद्या हो जाए और व्यर्थ का अगर जोश होता है तो क्या होते हैं सत्यता का और यथार्थता का होश खो देते हैं, फिर क्या होता है दुख अशांति होता है। तो व्यर्थ का जो जोश है इसको भी हमको समाप्त करना है। और फर्स्ट डिवीजन में कौन आएंगे? जो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते रहेंगे। तो ये थी संडे की मुरली, लक्ष्य प्रमाण सफलता को प्राप्त करने के लिए क्या करो, स्वार्थ की बजाय सेवा अर्थ कार्य करो। ठीक है, ओम शांति।
सुख चैन मिले सभी को।